ओम शांति। आज मधुबन की इस सभा में हमारे बीच में नेपाल विराटनगर से विनोद भाई आए हैं, अथक सेवाधारी है, और हम जब वहां थे तो हमने देखा किस लगन से दिन रात सेवा में लगे रहते हैं और जिस ढंग से सब कुछ आयोजन करते हैं या जिस ढंग से वहां की सेवाएं करते हैं। हम कहेंगे कि वहां पर जो भी सेवाएं हैं बहुत सारी, इतना उमंग है उनके अंदर, उत्साह है कि हर चीज मैं करूं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ बाबा इनके द्वारा कितनी सारी सेवाएं करा रहे हैं, और इनके अपने जीवन का बहुत सुंदर अनुभव है, हमने अभी तक नहीं सुना, पर आज वो खुद अपने मुख से ही कैसे वो ज्ञान में आए उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है कि पहले वो क्या थे और बाबा ने उनको अब क्या बना दिया, तो वो दास्ता, वो कहानी आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। विनोद भाई जी,
ओम शांति। ऐसे अनुभव तो सैकड़ों बार सुनाए हैं, लेकिन हिंदी में फर्स्ट टाइम है, तो मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूं अगर कोई मिस्टेक हो तो मेरे को इस ज्ञान में 4 साल हो गया है। उससे पहले अभी वो स्मरण में ला रहा हूं कि कैसे मैं क्या था और क्या बन गया, तो थोड़ा उस समय ये बातें हैं 2012-13 या 14 ऐसे ही कुछ। उस समय मैं बिजनेस करता था, तो क्या हुआ, वो जिसके साथ मैं बिजनेस करता था वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था अचानक से वो सब लेकर भाग गया। मतलब एकदम शॉक लगा कि क्या क्या हो गया। जैसे बोलते ना कि ये नेल और ये स्किन जैसा इतना मिलता जुलता था, अचानक से वो भाग गया। उसके बाद में मैं बहुत टेंस्ड हो गया क्योंकि जो कुछ अभी तक कमाया था सब कुछ चला गया, और बचपन से ही मैं ड्रग्स भी लेता था। मैं 13 या 12 साल का था, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं उसको नेपाल का ड्रग कैपिटल बोलते हैं, वहां पर सब लोग ड्रग्स लेते हैं। मतलब ये एक संस्कार जैसा है कि कोई नहीं लेता है तो वो एबनॉर्मल कहा जाता है उसको, ऐसा वो मतलब एक शहर है। ड्रग कैपिटल, क्राइम कैपिटल और फैशन कैपिटल, ऐसे 3 टाइटल दिए उस जगह को। तो बचपन से लेता था, लेकिन उस समय जब ये शॉक लगा कि वो सब पैसे चले गए, तो फिर और ही गहरे रूप में मैं वो ड्रग्स लेने लगा। जो मेरे को नहीं लेना था वो भी मैंने शुरू कर लिया। मतलब ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो मैंने नहीं लिया है। मैंने लगभग 14 साल तक ड्रग एडिक्शन किया, और उस समय बहुत ही टेंस था, और धीरे धीरे मेरे को कुछ चेंजेस घर में दिखाई पड़ा। अचानक से मम्मी पापा सब लोग है घर में, भैया भाभी भतीजे भती सब लोग है। अचानक से मैंने देखा मम्मी को, अचानक से वो खाने से पहले अचानक से वो मतलब दृष्टि, अभी पता चला कि दृष्टि है, वो एक मिनट पॉज करके वो खाना खाने लग गई। तो मैं सोचने लगा मम्मी को क्या हो गया, अचानक से पागल हो गया, क्या हो गया, प्रे करके खा रहे हैं जो हमारे कभी खानदान में किसी ने प्रे नहीं किया। तो फिर अंदर ही अंदर कैसा लगा, फिर अचानक से ये गार्लिक ऑनियन भी बंद हो गया जो कि मेरा फेवरेट था। तो मेरे को, मैं पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है घर में, अचानक से कोई जादू है क्या है, कुछ चेंजेस कैसे ये हो रहा है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर मैंने भी उसको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर टीवी सीरियल सब बंद होने लगे, पीपीएम टीवी चलता था, एक दूसरे को ओम शांति रिगार्ड करते रहे। अचानक से मतलब 15-20 दिन में सब कुछ चेंज हो गया। उस समय मैं बहुत ही टेंस था, और मेरे यहां तक बाल भी थे, अभी फोटो तो नहीं लाए मैं, और अभी वो फोटो देखता हूं तो रियल में लगता है कि ये बंदा कौन है, वो मैं है ही नहीं, ऐसे कुछ ऐसे लगता है, ड्रास्टिक पूरा चेंज हो गया। हाँ, कभी कभी क्योंकि उलझते थे ना, तो दोस्त थे मेरे, बहुत कम थे लेकिन बहुत क्वालिटी वाले थे। और मुझे लगता है संसार में हर एक मनुष्य, हर एक उसका मन में अपना एक डायरी होता है जहां पर उसने अपने कुछ गिने चुने दोस्तों का नाम है जिसके साथ वो हर चीज शेयर करता है। जैसे अभी हम बाबा के साथ करते हैं, हर चीज वो शेयर करता है। ऐसा ऐसा सबके पास है, आप लोग के पास भी है। मेरा भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब ये घटना हुआ कि मेरा सब पैसा खत्म हो गया तो धीरे धीरे वो लोग डिटैच होने लग गए, मेरे को फोन भी नहीं किया, मतलब एकदम से मेरे को इग्नोर कर दिया उन्होंने। तो फील हुआ कि ये दोस्त मेरे पैसे के लिए ही वो लोग मेरे से मतलब मिलते जुलते थे, क्योंकि उनको खिलाना था, पिलाना था, ड्रग्स देना था, वो लोग फोकट में खाते थे। और इतना परेशान हो गया था, इतना वैराग आ गया था, घर में भी सिचुएशन ऐसा था कि मैं मम्मी से बात नहीं करता था, मम्मी बड़ा भाई से बात नहीं करता था, बड़ा भाई छोटे से और छोटा पापा से ऐसे बात ही नहीं करता था। मतलब एक साइकिल जैसा था घर में। और मेरा सोने का टाइम अमृत बेला था, 3 बजे 4 बजे जब सूरज की वो पहली किरण हल्का सा उजाला होता था तब मेरे को नींद आता था। और 2 बजे 3 बजे उठना सालों से यही चलता रहा। और रात को एक्चुअली मेरा दिन शुरू होता था, जब रात होता था तो दिन शुरू होता था। और रात में 2012-13 ऐसे कुछ, उस समय में मैं इतना ओवरडोज वो लेके सोता था कि सुबह उठना ही नहीं पड़े। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग का परिवार एक बहुत रेप्यूटेड परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत स्टेटस है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे परिवार में नहीं है। जो आज के बेसिक नीड्स है, जो धन दौलत, घूमना फिरना, इच्छाएं, सब कुछ है, सब एकदम संपन्न परिवार, फिर भी घर में सुख और शांति में जीरो थे। तो रात को मैं पूरा ओवरडोज होके सोता था और भगवान को भी नहीं मानता था, नास्तिक भी था। मम्मी पता ना है? नहीं, ठीक है, सब कुछ। मैं दिन में 50 पीस तो सिगरेट्स होता था मिनिमम, 2 बॉटल ऑफ वोडकास और गांजा चरस तो बैग्स भर भर के होते थे, ब्राउन शुगर, कफ सिरप, टैबलेट्स, कुछ तो भूल ही गया नाम, मिक्स करके लेता ना। तो इतना सिचुएशन था कि वो बाबा ने, अभी लगता है कि वो वैराग का वो शुरू हुआ था, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उस समय कोई मेरे को किसी देश का राजा बनाए, मतलब, और वो खरबों डॉलर दे दे तब भी वो मतलब अब इंटरेस्ट पूरी तरह से गुम हो चुका था। तो रात को ओवरडोज लेके सोता था, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी उस समय पता नहीं क्या हो गया, रात को 11-12 बजे जब सब लोग सो जाते हैं तो मैं इतना रोता था, रात को इतना रोता था, और फीलिंग आता था कि मेरा दुख किसी को पता नहीं चले। तो पिलो को ऐसे मुंह में एकदम दबा के ऐसे रोता था कि मम्मी पापा को बाहर में पता ना चले। लेकिन पता नहीं, रोते रोते ऊपर देखता रहा मैं, ऊपर आकाश में देखता था कि मैंने किसी को क्या किया है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। यहां तक कि मेरे सब पैसे भी चले गए, जिसको मैं इतना ट्रस्ट करता था वो भी भाग गया, और कोई नहीं है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो समाज वाले वो भी मेरे को विभिन्न टाइटल से पुकारते थे, कभी कभी कुछ, कभी कुछ ऐसे करके पुकारते थे। तो इतना अकेला पड़ गया था। लास्ट में पता नहीं, मैं ऐसे ऊपर देखता था, मेरे को अभी भी याद है वो कमरे का सीन, मैं बैठता था, मतलब वो ऊपर देख के रोना, फिर पुकारता था, अंदर से वो आवाज आता था कि मेरे को प्लीज बचाओ, प्लीज बचाओ, ऐसे करता था। और सुबह मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैं सुबह उठूंगा, फिर भी बाबा का बनना था, बाबा के लिए कुछ करना था, जीवन को चेंज करना था। फिर सुबह उठता था, फिर मम्मी डांटती थी, फिर डांटने के बाद में मतलब बाहर चला जाता था, फिर ओवरडोज होता था, फिर हम लोग का एक गैंग था, हम लोग पूरा गैंगस्टर जैसे घूमते थे, और सुख शांति के लिए मैं इतना परेशान था कि मैं हजारों किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किए, मेरे पास बाइक्स था, 3-4 बाइक्स था, तो कभी कहाँ पे कभी पहाड़ियों पे जाता था, वहां जाते वक्त नेचर के साथ रहता था, प्रकृति के साथ थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब भी घर आओ फिर वही अशांति वही दुख। तो अचानक से एक दिन मेरे मदर में मैंने एक चेंज देखा कि हम लोग का घर का एक नियम है कि कुछ भी करके आओ, जहां भी जाकर के आओ, रात को 9 बजे एनी हाउ एंट्री होना है घर में। तो रात को तो मेरा दिन शुरू होता था दोस्तों के साथ रहना और पीना ये सब करना, तो कभी 10:30 कभी 11 कभी 12 बजते थे। तो पहले तो आते थे तो मम्मी डांटती थी, ये लो खाओ ऐसे करके, मतलब खाना भी देती थी, लेकिन अचानक से मम्मी मुस्कुराते हुए वो प्लेट में, अभी भी याद है मुझे, वो एकदम मुस्कुरा के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे छोटे बच्चे के लिए कैसे हम भोजन देते हैं वैसे ही। तो मदर ने ऐसे लेके आए तो अंदर ही अंदर लगने लगा कि माता जी को क्या हुआ है, अभी खाना में प्रे करके खाती है, टीवी सीरियल्स बंद हो गए, प्याज लहसुन बंद हो गए, अभी खाना भी मुस्कुरा कर ला रही है। तो मेरे को अंदर से खुशी हुआ कि कल से मैं और देर से आ सकता हूँ और पी के आ सकता हूँ, तो इतना खुशी हुआ। फिर अगले दिन 12 बजे फिर गरम गरम एकदम, पहले तो ठंडा लाती थी फिर, लेकिन रात को भी गरम गरम, मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर 12 बज गए 1 बज गए, तो 15-20 दिन शायद ये चला होगा। फिर अचानक से पता नहीं कैसे वो संकल्प आया कि कैसी माँ है मेरी, घर का एक जवान लड़का है, इतनी रात को घर आता है, पूरा हाई होकर आता है, उसको डांटने के बजाय वो प्यार से खाना खिला रही है। मतलब अंदर से गिल्ट आया, मेरे को क्या हो गया है, जब वो डांटती थी तब भी पसंद नहीं, बोलता था कि अभी के लड़के ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, अभी तो ये 21st century है, वो बहाने देना। फिर जब वो नहीं डांटती थी तब भी मेरे को वो लगा ये वो क्यों नहीं डांट रही है, डांटना चाहिए ना। तो फिर लगा कि प्रॉब्लम मदर में नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरे में है, मतलब डांटती नहीं है तो भी तकलीफ और डांटती है तो भी तकलीफ। तो अंदर से वो इतना वो लगा कि मेरे को अब कुछ करना है, चेंज होना है, मेरे को चेंज होना है। तो उसी समय की बात है, भगवान तो नहीं मानता था, लेकिन अचानक से मेरे को टैटूज का बहुत शौक है, कुछ टैटूज है मेरे अभी भी, लेकिन वो एक टैटू मेरे को कहां से पता नहीं बनाने की इच्छा जागी। मैंने अपने आर्टिस्ट को बोला कि मेरे को एक ऐसा टैटू बना के दो जहां पर हर धर्म का वो सिंबल्स होता है ना, जैसे मुस्लिम्स में चांद दिखाते हैं, क्रिश्चियंस में क्रॉस दिखाते हैं, हिंदू में शिवलिंग, ये सब वो सब मिक्स करके मेरे को एक टैटू बना के दो हर एक धर्म। तो वो भी आश्चर्य मानने लगा कि ये तो कभी किसी ने किया भी नहीं है। तो उसी समय की बात, और लेकिन वो प्रोसेस में ही था, वो पिक्चर बनी रहा था, तभी मम्मी पापा सब लोग कहते थे कि तुमको ओम शांति चलना है, वहां जाकर अच्छा होगा। तो मेरे को लगता है ओम शांति जाकर के वही धूप जलाना होगा, वही जय जय करना पड़ेगा, वो मेरे को स्वीकार नहीं था, कदापि स्वीकार ही नहीं था। तो टैटूज, ड्रैगन, एंजल्स, ऐसे कुछ थे। तो वो स्वीकार नहीं था, भगवान को नहीं मानता, मम्मी ऐसे टीका लगाती थी तुरंत जाकर मैं पहुंचता था ऐसे। तो माँ बहुत डांटती, कैसा लड़का है मेरा, वो भजन कीर्तन भी नहीं करता, भगवान को भी नहीं मानता। तो बहुत परेशान थे घर वाले, बहुत ही परेशान थे। तो फिर अचानक से चेंज कहां से आया कि वो लोग बोलते थे कि ओम शांति चलो, फिर मैं मानता नहीं था। फिर बाहर वालों को भी घर पे ले आते थे कि इसको मनाओ, इसको कैसे भी ओम शांति में लेकर जाना है। तो इतना गुस्सा आता था, ये तो कहते हैं लेकिन बाहर वालों को भी घर में बुलाते। तो एक दिन सेंटर के भाई, समर्पित भाई, वो अचानक से कमरे के अंदर ही आ गए, मैं ऐसे लेटा था, तो वो बोलने लगे ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे, मतलब भाई ओम शांति, आपको अभी सेंटर चलना है, 7 डेज का कोर्स करना है। तो मेरे को लगा कैसा आदमी है, एक तो बिन बुलाए किसी के रूम में एंटर कर रहा है ना, विदाउट परमिशन, फिर बोलता है कि ओम शांति चलो आपका जीवन सुधरेगा। अरे ये इसको क्या होगा, घर वाले को क्या होगा मेरे लिए, मतलब कहां कहां बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इतना नेगेटिव था, और उसको मतलब मन में आया कि ये आदमी डोनेशन के लिए आया है, घुमा फिरा करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत रेप्यूटेड है वहां पर वो सोसाइटी में, तो घुमा फिरा कर वो डोनेशन ही मांगेगा और कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलूंगा, अंदर से तो स्वीकार नहीं था, फिर भी एक जो सत्कार करते हैं अतिथि को। फिर अगले दिन मैं पूरा डिप्रेस्ड होकर के ऐसे घर में एंटर किया तो देखा फिर दूसरी दीदी बैठी है सफेद साड़ी लगाकर, तो मेरे को फिर अभी ये भी मेरे को कुछ कहने वाली है, तो मैं एकदम मुंह छुपा के अंदर चला गया। फिर माता जी ने बोला तुमको अकल है या नहीं, घर पे कोई मेहमान आते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, परिचय करना चाहिए। तो फिर मैं आकर के बैठा तो दीदी ने, अभी भी मुझे वो दीदी का वो वॉइस मुझे याद है कि इतना मीठा, मेरे साथ अभी तक किसी ने बात नहीं किया। उसने दीदी ने बोला कि भाई आओ यहाँ बैठो। दीदी ने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, फिर उन्होंने कहा कि आपको 7 डेज कोर्स करना है, कोर्स कर लो, यदि आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं तो आप छोड़ दो। बस इतना ही कहा, ज्यादा कुछ प्रेशराइज उन्होंने नहीं किया। तो मैंने भी अंदर से तो स्वीकार नहीं था, फिर भी बोला ठीक है। तो उसी रात लाइक यूजुअल रात को 12-12:30 बजे होंगे, मैं बहुत हाई था और ही दुनिया में था, अचानक से वो गीत है वो PMTV में बजता है, ओम शांति ओम आई एम अ पीसफुल सोल, ये ध्वनि है मंगल ध्वनि है, पता नहीं वो सुनने का मन आया, जबकि इतना मैं नशे में था, बहुत नशे में था। और वो टीवी में चलता था क्योंकि टीवी सीरियल्स बंद हो गए थे, मम्मी लोग देखते थे, वो गूंजता था अंदर ही अंदर। फिर वो रात के समय में वो आने लग गया, फिर लैपटॉप खोला, गूगल में जाकर, पता नहीं था अब कहां से निकालना है, गूगल में जाकर टाइप किया, आ गया। तो मैंने कितना आधा एक घंटा तक वो गीत को कंटिन्यू, मैं इतना नशे में था, शायद मैं पहला व्यक्ति हूं, पहला ब्राह्मण हूं जो कि नशे में बाबा का गीत सुनाए, शायद किसी ने नहीं सुनाए। तो आधा एक घंटा तक मैंने उसको सुना, सुनने के बाद में संकल्प, इतना पावरफुल संकल्प आया कि मैंने अब तक जीवन में जो कुछ ये सब ये ड्रग्स किया, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये कलयुग में नहीं किया, मतलब सब कुछ किया है, घूमना फिरना, इच्छाएं खरीदना, सब कुछ जो कलयुग में एक युवा को करना था सब कुछ किया है। फिर संकल्प आया कि मेरे को अब ये लास्ट, दिस इज माई लास्ट नाइट, इसके बाद में मैं इस चीज को कभी भी टच नहीं करूंगा, ऐसा पावरफुल वो थॉट आया। फिर रात को 2-3 बजे तक खूब मैंने लिया, सब कुछ जो जो था पूरा वो क्लोसेट में था, सब निकाल के मतलब सब कुछ लिया। फिर अगले दिन सुबह उठा, भैया को बोला कि मेरे को ओम शांति जाना है सेंटर में, वहां पर किसको क्या करना है फोन कर लो। तो भैया तो बहुत खुश हो गए। फिर मैं चला गया तो दीदी ने वेलकम किया और स्टार्टिंग में ही वो प्रदर्शनी था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो था। दीदी ने पूछा जानते हो इनको, तो मैंने ऐसे नीचे देख करके बोला लक्ष्मी नारायण है क्या, तो दीदी ने बोला हाँ। ऐसे भक्ति में तो जीरो था, कुछ भी नहीं पता था। तो दीदी ने कहा कि आपको इन जैसा बनना है। तो मेरे को अंदर से लगा कहां फंस गया अभी, ये कहां हम कहां, मतलब हो ही नहीं सकता। तो फिर भी आए हैं तो चलो सुन लेते हैं। तो 10-15 मिनट में दीदी ने सब कुछ समझाया, फिर ऊपर लेकर के गए और दीदी ने कहा कि आपका 7 डेज कोर्स आज से शुरू होगा। तब दीदी ने बिठाया और वो टेस्ट, वो चाय और टोली का टेस्ट अभी भी मुझे याद है, मतलब मम्मी लोग तो शेयर करते थे सबके साथ सेंटर्स में, तो शायद दीदी को फीलिंग टचिंग आया कि इसको टोली देना है फर्स्ट में, तो इतना वो टेस्टी था, अभी भी मेरे को वो फील आता है। तो कोर्स से पहले मेरे को वो चाय और टोली दीदी ने दिया, फिर मैंने लिया। फिर दीदी ने कहा कि चलो अब कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा दीदी रुको। तो जैसे ही मैंने रुको कहा, मेरा मतलब जो कुछ अंदर था इतने सालों से, क्योंकि दोस्त लोग सब बिछोड़ गए थे, सब लोग ने इग्नोर कर दिया था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैंने दीदी को कहा दीदी आपको मैं अपना लाइफ का कुछ सुनाऊंगा। तो दीदी को मैं मतलब रोते रोते सब कुछ जो नहीं कहना था वो भी मैंने दीदी को सब कुछ सुना दिया रोते रोते। फिर दीदी ने कोर्स करवाया, उसी समय दीदी ने मुझे बाबा का परिचय दिया। दीदी ने पूछा कि भगवान को जानते हो, मैंने कहा जानते तो नहीं है, मानते भी नहीं है, अगर है तो एक है लेकिन कौन है कहा है पता नहीं, इसलिए नहीं मानते। तो दीदी ने कहा गॉड इज लाइट, गॉड बाबा, ऐसे सब परिचय 2-3 सेंटेंस में दिया। फिर दीदी ने कहा कि आपको कोई नहीं सुन रहा था ना संसार में, लेकिन अब वो सुनेगा, आप उसको बताओ। तो जैसे ही दीदी ने ये बताया, वो दूसरा मेरा फिर लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था, एकदम से यकीन हो गया हाँ गॉड है तो लाइट है, मतलब शरीर वाला को मैं मानता ही नहीं था। फिर तो मतलब जैसे कि वो परिचय मिलते ही वो तीसरा नेत्र जैसे खुल गया। फिर दीदी ने मेडिटेशन रूम में जाकर के कुछ कमेंट्रीज किया तो अशरीरपन का हो गया, तुरंत ही अनुभूति हो गया। फिर तो ऐसा वो खुशी तो तुरंत में घर गया, माता जी रोटी बना रही थी, माता जी के चरणों में एकदम से जाकर के मैं पूरा गिर गया कि माता जी आई एम वेरी सॉरी, आपको मैंने सालों साल कितना दुख दिया। तो माता जी ने उठाया, फिर गले मिले, फिर मैंने कहा माता जी अब देखना मैं कैसे चेंज होता हूँ। तो जिसके साथ मैं बात नहीं करता था, जैसे इग्नोर करते हैं ना बाइक चलाते वक्त, ऐसे मुंह फिर के चले जाते हैं जो लोग होते हैं उससे बात नहीं करते, तो सबको मैंने फोन किया और मैंने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती आपका नहीं है, गलती मेरा। मेरे में बहुत नेगेटिव था उस समय। तो जैसे ही वो सेंटर्स में दीदी ने वो फर्स्ट डे में ही बोला कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन उस समय लगता था कि मेरे मदर को चेंज होना है, फादर को चेंज होना है, ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स को चेंज होना है, तभी मैं चेंज होऊंगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद में मतलब एक आईना जैसा दिखा कि प्रॉब्लम्स उनमें नहीं है, सब प्रॉब्लम्स मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। तो फिर इतना पावर मिला कि अचानक से मैंने चेंज कर लिया। और वो रही ड्रग्स की बात, तो 9 दिन तक मेरे को अभी भी याद है, मैंने इट्स ट्रायल किया। शायद आपके घर वाले कोई है घर में जो लेता है तो उनको ये एक ट्रिक है, तो वो पैकेट्स में रखता था जेब में। और तो शुरू से ही राजयोग में अनुभूति भी हुआ और ज्ञान भी मिलने लगा। तो पता चला कि आई एम अ सोल, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको मेरा ऑर्डर से चलना है। तो वो पैकेट को मैं इधर रखता था, इतना दुख दिया था ना 14-15 साल से, तो मैं ऐसे हाथ ऐसे करके वो पैकेट से बात करता था, तूने मुझे पिया ना, अब पी के देखो, मैं तेरे को निकालूंगा ही नहीं जेब से, ऐसे मतलब वो लिटरली बात करता था, बैठता था। क्योंकि भोजन जैसे ही करते थे ना, हाथ धोने से पहले ही वो निकाल के पी लेता था, ऐसा मतलब एडिक्शन था, एकदम चेन स्मोकर था। ऐसे हाथ बांध करके बैठ के अभी अभी पी कर देखो अभी अभी, तो कोई दोस्त आकर के निकाल के तो देगा नहीं। तो एक दिन नहीं पिया, दूसरे दिन नहीं पिया, लगभग 9 डेज मैंने ट्रायल किया, उसने कुछ भी नहीं किया मेरे को। तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ था, अपने मतलब पावरलेस, इतना कंट्रोल नहीं है अपने ऑर्गेन्स में। तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने लास्ट में जाकर के डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उतना महंगा था ना, तो मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया वो। मतलब बाहर का ही सब इम्पोर्टेड लेता था, वो लोकल्स वगैरह कुछ यूज नहीं करता। हाँ, डिस्ट्रॉय करना शायद उसका भी क्यों। और वो उसको दिया मैंने, वो 1-2 मास के लिए वो गायब हो गया, वो इतना नशे में चूर रहता था ना। तो ऐसे उस पर विजय पाया, लेकिन शुरू का जो वो 7 डेज का कोर्स था, मैं एकदम से डिटैच होकर, फोन ऑफ था, मैं अपने जैसे ही सुबह कोर्स का 1 घंटा खत्म होता था, रूम पे जाकर के वो बाबा का एक अंडे आकार का ट्रांसलाइट है, उसको भैया के रूम से निकाल कर अपने ऐसे बेड पे रखता था। और मतलब इतना मैं सरेंडर हो गया ना उस समय, बाबा को बताया कि बाबा मैं इतना इतना मैं मतलब नीचे हो गया, इतना पतित पना हो गया था, इतना तमो हो गया था संस्कार, फिर भी आपने क्या देखा कि आपने मुझे अपना परिचय दिया, अपना बनाया। मतलब शुरू दिन से इतना निश्चय बैठ गया बाबा में। तो इतना रोता था, मतलब मन में ऐसा था कि कोई मेरे को सुने, कोई दोस्त आए मेरे को ऐसे थपथपाए। तो मैं बोल रहा था कि हरेक के मन में डायरी होता है ना, तो सब कुछ शेयर करते हैं उन दोस्तों के साथ, लेकिन मेरे को कोई सुन नहीं रहा था। तो बाबा ने सब कुछ सुना। 9-10 दिन तक इतना रोता था वो ट्रांसलेट के आगे, कुछ सुध बुध नहीं। और फिर ऐसा पावर मिला, ऐसा पावर मिला कि बस बात नहीं पूछो। अभी वो फोटो देखता हूँ अभी भी, मतलब कहाँ कहाँ जाता था, साधु लोग के साथ में बैठता था, उनको जो मेरे पास है मैं उनको देता था, और जो उनके पास है वो मैं लेता था। पहाड़ों में जैसे मुक्तिनाथ बोलकर एक जगह है, वहां पर जाता था, सिक्किम वगैरह, मतलब हजारों किलोमीटर ऐसे ट्रैवल करते थे। फिर कभी कभी दुख लगता है कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त ड्रग्स लेते थे, बहुतों ने शरीर छोड़ा, बहुत लोग अभी भी उस लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लोग। और कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। उस पैनल से मैं ही एक लकी सौभाग्यशाली एक है ना आत्मा हूं जो कि अभी तक सरवाइव कर रहा हूं। और 14 साल जो मैंने व्यसन किया, एक दिन वही कोर्स जिस दिन बाबा का परिचय मिला, तो अभी तक लगभग 4 साल हो गए। ड्रग्स तो दूर हो गए, एक सुपारी का दाना भी मेरे को वो अभी भाता नहीं है। मतलब इतना वो पावर मिल गया है बाबा से, लगता है कि सारा संसार भी एक हो जाए तब भी मैं अब बाबा को नहीं छोड़ने वाला, सारा संसार एक हो जाए तो ऐसा पावर लगा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन का कोर्स में, मतलब जब मैं वो डिप्रेशन में था ना, ऐसा लगता था, ऐसा वैराग था कि कोई मुझे आकर बड़ा सारा मशीन गन दे दे, सबको मार दूंगा। मतलब वो बचपना था, मतलब इतना वैराग कोई नहीं चाहिए, मतलब इतना, हालांकि ऐसा दुख नहीं था लेकिन मानसिक स्थिति बहुत डाउन था ना, तो घर पे मार दूंगा पहले तो, फिर सोसाइटी वालों को, फिर शहर वालों को, सबको मारूंगा। तो दूसरे दिन दीदी ने विनाश का दिया कि भाई अब तो विनाश होने वाला है, सब लोग मर रहे। तो इतना खुशी हुआ अंदर से, तो सब कुछ बाबा ने, बाबा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, हाँ बिना गन चलाए सब लोग मर जाएंगे, ऐसा मतलब खुशी हुआ। कि ज्यादातर मैं देखता हूँ माताजी लोग को, जब दीदी लोग हम भी कोर्स कराते हैं तो डरते हैं, अरे सब लोग जाने वाले, इतना कमाया ये वो क्या होगा। तो शायद मैं ही फर्स्ट व्यक्ति हूँ कि इतना खुशी लगा, विनाश मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कि अभी भी ये वो दुख का जो संसार है ना, जो दुख देखा है वो जड़ से मिटना है। वो बाबा से मैं ये, बाबा बोलते हैं इच्छा नहीं रखो, लेकिन फिर भी एक इच्छा है कि अंत तक रखना है, भले संपूर्ण बने ना बने, लेकिन पूरा रावण का सत्यानाश होकर के मैं वो देखना चाहता हूँ कि कैसे दुख का वो विनाश होता है। तो ऐसे, और फिर दोस्त लोग अभी मेरे साथ बैट भी लगाए दोस्तों ने, कब तक सफेद लगा के चलोगे, देखता हूँ मैं, एक ना एक दिन तो तेरे को लेना ही पड़ेगा, ये सब फिर से खाना ही पड़ेगा, ड्रग्स तेरे को लेना ही पड़ेगा। और ऐसे समाज में हम लोग कभी सर्वाइव कर रहे हैं कि उस समय जब मैं ये लेता था तब मेरे को रोकने वाले बहुत, मतलब ना के बराबर थे, कोई नहीं रोका कि मत लो तुम मर जाओगे मत लो। लेकिन अब जब नहीं लेता हूं तो कभी कोई फंक्शंस में जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि इतना सा तो लो, ये शगुन होता है ये, क्योंकि नेपाल में उसको शगुन बोलते हैं ना, जब भी कोई फेस्टिवल, कोई मरता है तो भी शगुन, कोई जन्म लेता है तो भी शगुन होता है वो। तो ऐसे समाज में हम लोग बैठे हैं ना, तो दोस्त लोग ऐसे है, तो बाबा ने एकदम से डिटैच कर लिया। अभी वो दोस्त लोग के सामने जाता हूं तो पता नहीं नमस्ते करते हैं वो, और मेरे सामने वो सिगरेट पीना वो सब नहीं करते, पता नहीं क्यों वो नहीं करते, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस होगा, वो लोग नहीं करते ऐसे। और बाबा की कृपा से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2 साल हो गया, वहां पर पाठशाला भी है, वहां पर दोस्त लोग है, तो उनको ज्ञान सुनाने का एक चांस भी मिला है। वहां पर बाबा का ज्ञान मुरली रोज चलता है। और ऐसे बीच बीच में तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है, क्योंकि समय का भी ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा ये हाँ भूल गया था बताना, तो माताजी का इतना संकल्प था कि बच्चा मतलब ओम शांति जाए। तो जब मैं जाने लग गया तो जैसे ही फर्स्ट दिन से पूरा एकदम है ना बलि चढ़ गया, एकदम बाबा में पूरा बलि चढ़ गया। तो माताजी अब टेंशन होने लगे, माताजी को पता नहीं, इसको तो बस मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ज्ञान सुन ले, थोड़ा बहुत अपने में चेंज कर ले, लेकिन ये तो पूरा इसको तो संसार से ही वैराग आ गया। तो माताजी ने कहा कि सेवा बंद, जाना है, मुरली सुनना है, घर आना है। वो तो नहीं होगा, मैंने सीधा बोला माताजी नहीं होगा, वो तो मेरे को बाबा ने जीवन दिया है, मैं बाबा के लिए अपना जो कुछ होता है मैं करूंगा, तन मन धन से जो कुछ होगा मैं करूंगा, सेवा के बिना मैं नहीं रहूंगा। तो माताजी ने कहा कि ठीक है तुम सेवा करो, मैं मुरली बंद करती हूं। फिर अब मैं क्या करूं, फिर माताजी 6-7 मास के लिए सेंटर जाना ही बंद कर दिया माताजी ने। फिर तो इतना चिंता लगा, इतना चिंता होता था, तभी उसी समय सेवा के लिए बहुत विघ्न आए, तो युक्ति रच करके मैं यहां पर 3 मास के लिए रुका था सेवा में, पांडव भवन में। और छोटी सी एक घटना है मैं सुनाता हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण लोग हम बहुत चिंता करते हैं कि घर वाले ज्ञान में चले, बाबा इसका मेरे पति का बुद्धि का ताला खोले। यहां पर एक मेरे साथ प्रैक्टिकल में कुछ हुआ था, लिटरेचर में मैं सेवा देता था, जनवरी का मास था, उसी समय नोटबंदी अभी जस्ट हुआ ही था नवंबर में, तो जनवरी 10 या 11 कुछ ऐसा था। तो मैं बस बैठा था चेयर पर, और एक 45-50 ऐसे एज का एक भाई आया, जिसके दाढ़ी था, वो बाल थे, बैच नहीं था लेकिन व्हाइट क्लोथ थे। तो ऐसे खुजली करते करते आया ऐसे, तो भाई साहब से बोला यार दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, 2000 के लिए लाइन में लगने पड़ते हैं सटवाने के लिए। तो ऐसे कुछ 2-3 मिनट के लिए बातें तो किया वो भाई साहब से, और वो बहुत टेंस में था, बहुत टेंशन में था। तो वो चला गया, भाई साहब ने पूछा कि जानते हो इसको ये कौन है, तो मैंने कहा नहीं। मतलब शुभ भावना तो था कि सब लोग चले घर में, लेकिन चिंता युक्त था ना, वो सबको चलना ही है, सबको मेरे जैसा पुरुषार्थ करना ही है, ऐसा वो चिंता होता था। लेकिन उनको देखा तो लगा कि अगर ब्रह्मा बाबा चाहते तो क्या उनको नहीं चला सकते, चला सकते थे ना, लेकिन ड्रामा है, पार्ट, ये सब फिर ज्ञान की बातें आती है। फिर मेरे को इतना खुशी हुआ, अरे मैं क्यों चिंता ले रहा हूं। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर दूसरा सीन हुआ कि एक बहन थी, उसके साथ में एक 14-15 साल का एक भाई था। तो वो दीदी के 10 फिंगर्स में 10 अंगूठी और छोटा सा एक रुद्राक्ष का माला था, एक कृष्णा का हनुमान, मतलब ऐसा देखता था कि भक्ति का कुछ पुतला सामने खड़ा है ऐसा। फिर वो उन्हें कुछ अंगूठी खरीदा तो मैंने दिया। फिर भाई साहब ने पूछा कि जानते हो इनको कौन है, तो मैंने कहा नहीं। फिर तो मतलब अभी मतलब 2-3 साल हो गए, मैं चिंता ही नहीं लेता, मतलब चले ना चले मासी का घर नहीं है कोई, ये इतना ऊंचा मंजिल है। मतलब बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बुद्धि का ताला खोलना है तो बुद्धि को पहले खाली करो, फिर मेरे से शक्ति भरो, बस यही वाक्य आते हैं। तो मैंने वही प्रैक्टिकल में किया, चिंता छोड़ दिया, बस शुभ भावना देता था, चलना है तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम। तो अभी तो फिर माता जी चलने लग गई, शायद वो शुभ भावना काम किया, अभी तो रेगुलर जा रही है। अब पिछले मास में मैं आया भी था मम्मी को पापा को लेकर के, वो लोग बहुत खुश है। अभी हाल में हम विराटनगर नेपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ यज्ञ का कुछ काम था तो कल खत्म हो गया, तो आज मैं जा रहा हूं। और डॉक्टर भाई जी आए थे अभी अप्रैल में, अच्छी सेवाएं शायद उन्होंने इधर शेयर नहीं किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां के आत्माओं को बहुत ही मतलब एक ऊर्जा मिली है, विशेष करके ये जो अपना सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप है, बहुत सारे लोगों ने उसमें ऐड किया है। कि मेरे ज्यादा से बात तो नहीं हुआ, लेकिन कुमार भाई वो खुद बोले मेरे को कि हम लोग का जीवन बहुत चेंज हो गया जब से भाई जी ने भट्टी, ऐसा मतलब पावरफुल भट्टी था वहां पर, तो कुमार भाई ने कहा कि हम लोग का लाइफ बहुत चेंज हो गया, जो हम अलबेले थे पुरुषार्थ में तो वो बहुत तीव्र रूप से बढ़ा है। तो सब ने विशेष करके भाई जी को बहुत बहुत याद प्यार भेजा है वहां से। और ये सेल्फ प्रोग्रेस टीम जो कि सुशील भाई जी चला रहे हैं, उसके लिए भी सब ने बहुत सारे गुड विशेस दिया हुआ है। आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई जी, जो आपने अपने जीवन का इतना सुंदर अनुभव सुनाया। ये सब सुनने के बाद तो मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और जब हम वहां थे हमने देखा ये कैसा कुमार है, इतना उमंग उत्साह, इतना उमंग उत्साह, सुबह से लेकर रात तक दिन रात सेवा कर रहे। पर ये जो अनुभव अभी जो सुना है ये और वो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब पहले ऐसा था, कि जिस तरह की उनकी सेवा और जो लगन है नॉन स्टॉप, बिल्कुल मतलब हम देखते थे दोपहर भी हो गई तो अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, बस लगे हुए हैं सेवाओं में, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, एक मिनट भी एक जगह नहीं रुके हुए, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, किसी ना किसी की कुछ कर रहे हैं। इतनी सारी जिम्मेवारी है, गाड़ी चलाने से लेके सारा ऑडियो सिस्टम सब सब सब, जैसे कि वन मैन आर्मी, ऐसे ही हमको लगा। प्रकाश भाई गए शायद, तो प्रकाश ने भी, प्रकाश भाई तो कह रहे थे कि जैसे ये भाई है इसलिए ये सारी इतनी सेवाएं हो रही है, इसको हटा दो तो शायद गिर जाए सब, मतलब इस तरह की हमने उनकी सेवाएं देखी। और अभी जिस तरह से उन्होंने ये अनुभव सुनाया कि कैसे मतलब असंभव है ये चीज जो बाबा ने संभव कर दी, जिसको भगवान को चुनना है वो कैसे भी करके चुन लेता है। और ये नहीं तो एडिक्शन हम रोज देखते हैं, माउंट अबू एक जैसे अड्डा है, यहाँ तो इतने एडिक्ट्स है, कितने दूर दूर से हर सैटरडे संडे लोग इसी काम के लिए आते हैं खाली यहाँ और ये माउंट के ही कितने सारे लोग हैं जो इतने एडिक्टेड है कि कितनी बार उनको हम एडमिट करते हैं, कितनी बार उनको यहाँ भेजते हैं, कितनी बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह गए, पूरे परिवार के परिवार उजड़ गए, रोते हैं यहाँ आकर, माए रोती है ओपीडी में आके, हमारे इतने सारे एडिक्ट्स पूरे माउंट आबू में ही भरे हुए हैं, सारे युवा, और कितनों ने तो हमारी आंखों के सामने शरीर छोड़ दिया। तो इनका अनुभव तो ऐसा है कि ये सब तो ड्रग्स, इनको इतने गरीब लोग हैं ये तो आपके जो ड्रग्स भी इनको नहीं मिलते, ये तो देसी पे ही चलाते हैं तो गरीब में तो इतना इस सब में रहते हुए भी कैसे भगवान ने चुन के इनको निकाला, मैं तो कहूंगा एक ये एक चमत्कार, ही एक स्पिरिचुअल मिराकल ही है एक, और वो भी ऐसे एक रत्न को तराशा बाबा ने, जिस तरह से मतलब निकाल के उसको तराशा, और वर्तमान में जो उनकी सेवा है और पुरुषार्थ है अनुकरणीय है। और बहुत बहुत हमको आज आपका अनुभव सुनकर मधुबन की ओर से, मधुबन निवासियों और के बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ओम शांति। हाँ, नहीं तो लोग छोड़ते ही, जैसे ही हम लोगों को कहते छोड़ दो तो वो छोड़ते हैं, 10 दिन के बाद आते हैं, क्या हुआ? जब तक वो नहीं पीते पेट साफ नहीं होता है, अब क्या करो, अब तो करो इसका कुछ ऐसे भी कुछ कुछ नई नई चीजें होती है, उनको तो लेना ही पड़ता है, उनको ऐसी चीजें चालू हो जाती है शरीर में, विड्रॉल सिम्टम्स कुछ ना कुछ होता है उनको, और वो चालू करते हैं। जीवन में डिस्टर्बेंस हो गया चालू करेंगे, बोर्डम आया चालू कर देंगे, डिप्रेशन हुआ चालू कर देंगे, पत्नी ने कुछ कहा फिर से चालू कर देंगे, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एडिक्शन एक ऐसा गर्त है अबिस्मल, उसमें से निकलना ही बहुत मुश्किल है। ये तो निकल के अब दूसरों को निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा है। तो ओम शांति।